नमस्ते, जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को प्रत्याहार समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है, ऐसा समझना होता है कि अच्छा, तो प्रत्याहार का मतलब है आंखें बंद कर लेना, आंखों से जो दिखाई दे उसे देखना नहीं है, जो कान से सुनाई दे उसे सुनना नहीं है, और इंद्रियों को इंद्रिय जय हो जाना प्रत्याहार का रिजल्ट है ना, प्रत्याहार करने की समाप्ति है, प्राप्ति है एक तरह की। और इंद्रिय जय होना किसे कहते हैं, जिसको कि इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होता है, आंखों से देखने में और कान से सुनने में, तो ऐसे समझ लेते हैं सारे लोग, है ना। लेकिन इसमें समझने वाली बात, इंद्रियों को और इन सब चीजों में समझने की जो बात है, वो पहले बात तो ये है कि ये जो नाक है, आंखें हैं, कान है, या आपकी त्वचा जो है और आपका जीभ जो हो गई आपकी, तो ये पांच जो आप सेंस ऑर्गन जिन्हें समझते हो ना, तो वो उस चीज को हम जो है इंद्रियां नहीं कहते, है ना। कई और वीडियोस में मैंने समझाया है कि इंद्रियां नहीं होती है, इंद्रियों से जुड़े हुए बाह्य अंग हैं ये, है ना। आंखें एक बाहरी अंग हैं, और आंखें, हमारा आंखें, नाक, कान, ये सब क्या है, पांच जो हम, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में सेंस ऑर्गन बोल देते हैं, ये सेंस ऑर्गन क्या है, ये सेंस ऑर्गन हमारी फिजिकल बॉडी का हिस्सा है ना, फिजिकल बॉडी के अंदर है। फिजिकल को दूसरे तरह से देखेंगे तो इसके अंदर भार है, एक नाप है इनका कि आंख का क्या साइज हो सकता है मनुष्य की, और चींटी की आंख का क्या साइज होगा, तो ऐसे एक टाइम एंड स्पेस में एक वेट है, एक मापदंड है, एक मेजरमेंट है उस चीज में। तो किसी भी चीज में मास है, ग्रेविटी, तो हम उसको बोल देते वो फिजिकल बॉडी का पार्ट है। तो इससे जुड़े हुए हमारी जो ये सारी चीजें हैं, इसके बाद ये काम कैसे करती हैं, आपके एक्चुअल में फिजिकल ब्रेन के अंदर इन चीजों के काम करने का, इनपुट के आने का एक सेंटर होता है ना, ब्रेन के अंदर सुनने का, कान के, कान से जो सुना जा रहा है उसको ब्रेन में एक सेंटर है, जो सुनने की वो न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर जो कि कान तक जाते हैं, ऐसे ही न्यूरॉन्स हैं जो टच फील कराते हैं आपको, तो वो न्यूरॉन्स पूरी त्वचा में जा रहे हैं आपके। ब्रेन में एक मेन सेंटर है उसका, फिर वहां से निकल के न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल भेजते भेजते ऐसे करके पूरे आपकी न्यूरोलॉजी, जिसको आप कहते हो न्यूरोसाइंस, तो वो न्यूरोलॉजिकली इस तरह से पूरी बॉडी कनेक्टेड है आपकी। तो ऐसे सुनने के उससे आपके कान से अलग, और आंखों से अलग, और नाक से सूंघने के लिए अलग, ब्रेन में अलग अलग सेंटर है, उसको भी इंद्रिय नहीं कहते हैं। क्यों? कि वो ब्रेन क्या है, ब्रेन में भी मास है, साइज है ब्रेन का, एक ब्रेन एक टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेन 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ब्रेन फिजिकल बॉडी का पार्ट है, मटेरियल वर्ल्ड का, ग्रोस वर्ल्ड का पार्ट हो गया। लेकिन क्योंकि वो ब्रेन में सेंटर्स हैं, तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी बात समझने बैठते हैं तो लोग बोल देते हैं कि हाँ, वो जो एक ब्रेन में सेंटर है ना, सुनने का, देखने का, या कुछ भी करने का, वो सारे सेंसर, न्यूरो सेंटर जो है हमारे, वो चीजें इंद्रियां हैं। तो फिर इसका मतलब हो गया इंद्रियां क्या फिजिकल बॉडी का पार्ट है? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, रियल में हम जिसे सटल या सूक्ष्म कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए शब्द नहीं है, ठीक है। तो अगर तो आप भाषा में उलझ जाओगे तो ये आपकी बुद्धि में ये वाला आज का वीडियो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो भाषा में नहीं उलझना, भाषा के हेर फेर में, भाषा की लिमिटेशंस पे इतना जोर नहीं देना, ठीक है। समझने की बात क्या है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा फिजिकल शरीर, पूरी फिजिकल बॉडी, या तो खत्म हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, या तो आग में जला दी जाती है, दफना दी जाती है, या पानी में बहा दी जाती है, जो भी है, कोई एक पंच तत्व में से कोई एक तत्व यूज करके बॉडी को हटा दिया जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो आत्मा है, जो आत्मा जिसको हम जीव आत्मा भी कहते हैं, तो उसमें जो जीव पार्ट है ना, आत्मा के पास क्या चीज है जिसको हम जीव कहते हैं? जीव हम कहते हैं उसके सूक्ष्म शरीर को, जो कि आत्मा तब तक धारण करके रखती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक वो सूक्ष्म शरीर को धारण करके रखती है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रियां आती हैं, इंद्रियां आती हैं, ठीक है। कर्मेंद्रियों की हम बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। कर्मेंद्रियां हो गए आपके हाथ, आपके पैर, और आपके एक्सक्रीशन करने के सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपके, उसके अंदर जो चीजें, वो सब कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। उनकी हम आज बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम बात करें ज्ञानेंद्रियों की, ठीक है, जो कि हमारे आंख नाक कान से जुड़ी हुई है। तो सूक्ष्म इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि चक्षु घ्राण रस और चक्षु और त्वक और श्रोत, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां जब साथ जाती हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान करने के लिए के जो ये स्थान है, ये सिर्फ ज्ञान का स्थान है एक्चुअली। और ये ज्ञान किस चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? इससे हम गंध का, रूप का, रस का, स्पर्श का और शब्द का, ठीक है, ये ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो अब ज्ञान प्राप्त करने में क्या होता है कि जब आत्मा एक अलग तरह का शरीर लेती है, तो इंद्रियां, तो चक्षु इंद्रियां है, तो उसका काम है देखना। लेकिन अगर किसी ने शरीर धारण किया, किसी आत्मा ने शरीर धारण किया मक्खी का, तो मक्खी के पास एक ही गोलक में 1 मिलियन आंखें हैं, एक्चुअल में फिजिकल आंखें जिसे हम कहेंगे, उसके शरीर में 1 मिलियन है। मनुष्य में तो 2 है, देखने के गोलक जो है उसके अंदर हमारे पास 2 ही पुतलियां हैं। मक्खी के पास 2 नहीं है, बहुत 1 मिलियन पुतलियां हैं एक आंख में उसकी। इसीलिए आप कितनी ही मारने की कोशिश करो, उड़ जाती है ना, क्योंकि वो इतनी सारे डायरेक्शन में 360 डिग्री घुमा घुमा के अपनी आंखों को देख सकती है। ऐसे तो आंखें फिजिकल मैनिफेस्टेशन इंद्रियों से शरीर के अकॉर्डिंग हो जाता है कि वो आत्मा क्या शरीर लेगी, तो चक्षु से क्या बनेगा, ठीक है। ऐसे ही वो वाले अपना सब उसके अकॉर्डिंग, शरीर के अकॉर्डिंग, लेकिन पीछे इंद्रिय जो है जिससे रूप का ज्ञान होता है, वो चक्षु की इंद्रिय है, वो आपके सटल बॉडी का हिस्सा है। तो कई बार होता है ना कि इंद्रियों में खराबी आ जाती है। इंद्रियां वैसे इतनी ऐसे खराब नहीं होती, लेकिन कई बार कोई इतने ही पाप कर्म कर ले या कुछ कर ले तो इंद्रिय दोष आते हैं और सब चीजें आती हैं। और इंद्रिय दोष सिर्फ इसलिए नहीं आते कि वो चक्षु की इंद्रिय खराब हो गई। वो इंद्रिय दोष क्यों आते हैं? क्योंकि हम अक्सर छठी इंद्रिय के बारे में बात करना भूल जाते हैं। 5 ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, वो तो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमारे लिए उनको समझना आसान है, क्योंकि वो आंख से वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके इस शरीर का फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। लेकिन जो छठी इंद्रिय है, जिसे हम मन कहते हैं, मनस भी कहते हैं उसे हम, जो कि इन 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और छठी इंद्रिय है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। उस वो कैसे काम करता है हम उसको समझते नहीं, तो हम इंद्रिय जय भी गलत समझेंगे और प्रत्याहार कैसे करना है वो भी गलत समझेंगे, अगर हम छठी इंद्री मन को नहीं समझेंगे तो। अब मन पे, मनस कहते हैं, मन कहते हैं उसको, और 5 इंद्री से वो जुड़ा होता है, ठीक है। और क्योंकि वो इंद्री से जुड़ा होने का मतलब है कि 5 अलग अलग प्रकार के ज्ञान के सेंटर, इंद्रियां क्या है, ज्ञान इंद्रियां क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि वो ज्ञान के सेंटर है, ठीक है। तो 5 अलग अलग प्रकार के ज्ञान के सेंटर से एक छठा प्रकार भी बनता है, छठे प्रकार भी में भी ज्ञान जाता है और चीजें जाती है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये पेड़ है, तो आंखों से हमने देखा कि पेड़ है, तो पेड़ के बारे में कौन सा पेड़ है, क्या पेड़ है, और ये पेड़ ही है, खंबा नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो वो ज्ञान से, वो ज्ञान कहां जा रहा है, वो पहले इंद्रिय ने देखा, उसको देखने का ज्ञान हुआ, फिर हमने उसके मतलब कि हमने रूप देखा, फिर हमें वो रूप में बदला कि अच्छा ऐसे रूप का है, तो ये पेड़ ही है, खंबा नहीं है। तो फिर उसके बाद वो ज्ञानेंद्रिय को क्या ज्ञान में ज्ञान क्या पहुंचा कि ये पेड़ है। पेड़ तो चल के इंद्रिय में नहीं घुसा, ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म सी चीज है। ज्ञान का कोई रूप, कोई आकार, कोई चीज नहीं होती है। ज्ञान अमूर्त होता है। अमूर्त होने का मतलब है कि वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसमें कोई वेट, कोई ग्रेविटी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है ज्ञान में। ज्ञान की अपने आप में जो इकाई है उसके अंदर की बात हम कर रहे हैं। तो पेड़ है, पेड़ तो चल के इंद्रियों तक तो नहीं गया हमारी, है ना। तो हमको कैसे ज्ञान हुआ? बाहरी जो गोलक है इनको हम बाहरी अंग कह सकते हैं। तो आंखें क्या है हमारा? बाहरी अंग है ना, जो किससे जुड़ा है? रूप की इंद्रिय से जुड़ा है। रूप का ज्ञान कराएगा। ज्ञान का लेवल में, ज्ञान में क्या ज्ञान होगा हमको? बोध क्या होगा? रूप का ज्ञान कराएगा वो हमें। और उस रूप से, रूप के लिए इंद्रिय जो है वो चक्षु है पीछे। तो चक्षु में क्या ज्ञान जा रहा है? रूप। तो अब वो रूप हमारे, अब हमको कहां से पता चला कि ये पेड़ है? किसी बहुत छोटे से बच्चे को जब हम सिखाते हैं या बताते हैं, साल भर के बच्चे को, दो साल के बच्चे को, जब वो पूछता है कि ये क्या है, तो हम बार बार उसे बताते हैं ना कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, सिखा रहे ना उसको। तो बार बार उसके अंदर वो, उसकी रूप की इंद्री से वो ज्ञान जाता है, देखने से वो ज्ञान जाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है। उसको तरह तरह की चीजों का, बाहरी संसार का, में रूप का ज्ञान होता चला जा रहा है। अब हम सोशल कंडीशनिंग किसे कहते थे? जबकि वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होता चला गया, बहुत टीवी देखा, सब कुछ देखा, संसार में देखा, संसार में खेल रहा है, जी रहा है, अब उसके रूप के ज्ञान पे क्या चीज आने लग गई? ये इंसान बहुत सुंदर है और ये इंसान तो बिल्कुल खराब है और ये बिल्कुल दिखता भी अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज कि कोई अच्छा नहीं दिखता है, शक्ल सूरत किसी की अच्छी नहीं है, तो हमने ये भी मान लिया कि वो खराब इंसान है। ऐसी धारणा, ऐसा ज्ञान। तो देखो, रूप में, रूप का जो इंद्रिय थी आपकी, वो चलते 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 जीवन जीते 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 जीते, अब उसमें से बाहर से इनपुट तो आज भी रूप का ही आता है, लेकिन कैसा इनपुट आ रहा है? एक खराब इनपुट है वो, है ना। अंदर ज्ञान क्या जा रहा है? रूप के, रूप जब देख रहे हैं तो अंदर ज्ञान क्या जा रहा है? कि ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं सिर्फ बाहर से। अभी हम सिर्फ बाहर से इनपुट की बात करें क्योंकि हम उसकी बात करें, लेकिन मन, मन में जा जाके ये सब इकट्ठा होता जाता है। मन में एक और चीज काम करती है, मन के ऊपर एक और चीज का प्रभाव पड़ता है, वो है चित्त की वृत्तियां और चित्त के संस्कार। अगर वो इतने बिगड़ चुके हैं कि वो आदमी, इंसान, मनुष्य जो है वो उसमें भावनाओं में जीता चला जा रहा है, विचारों में जीता चला जा रहा है, हर वक्त अपने दिमाग में उलझा रहता है, इस तरह से जीवन जी रहा है, चेतना नहीं है उसके अंदर इतनी, तो मन के ऊपर भी उसके चित्त का प्रभाव होता है। चित्त की वृत्तियों का प्रभाव हमेशा उसके मन पे पड़े, किसी के भी मन पे पड़ता ही पड़ता है। तो मन के अंदर ये जो छह विकार पैदा होते हैं, काम, लोभ, मद, हर्ष, मान, क्रोध, ठीक है, ये जो छह विकार पैदा हुए मन के अंदर, इनके दो कारण थे। एक आंतरिक कारण था, इंटरनल रीजन था, वो ये कि चित्त की वृत्तियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो हावी हुई जा रही है मन के ऊपर, ठीक है, वो अंदर से होने वाली गड़बड़ है। हर आदमी संस्कार लाया है कोई ना कोई, तो जो संस्कार लाया है उसका प्रभाव उसके मन पर है। कितने सारे छोटे छोटे, बहुत सारे, बहुत ही छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, अत्यंत क्रोधी होते हैं। अब कहां से क्रोध आया बताओ उनके अंदर? उनको तो गुस्सा करने का कोई काम नहीं करो तो भी वो गुस्सा करते हैं, टेंट्रम करते हैं, ठीक है। और कुछ छोटे से बच्चे होते हैं लेकिन इतने हद के दयालु होते हैं, बहुत ही दया होती है उनके अंदर। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से निहायत दानी टाइप के बच्चे होते हैं, अपना कुछ भी उठा के, खुद के यूज का है चाहे नहीं है, चाहे खुद को जरूरत है उस चीज की, फिर भी दूसरे बच्चे को दे देते हैं आराम से उठा के। संस्कार है ना, तो संस्कार का प्रभाव। और हम ये कह सकते हैं कि उन छोटे बच्चों की इंद्रियों ने अभी इतना कुछ देखा नहीं है, और मैं बात कर रहा हूं 2-3 साल के बच्चों की, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल वाले बच्चों की, उनमें भी आप देख सकते हो ये वाली चीजें। तो संस्कार लाए हैं बच्चे अपने अपने, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रभाव उनके मन पर पड़ा हुआ है ना। और अब बाहर से जो इनपुट आएगा वो तो करेगा ही करेगा। बाहर से हम इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो भी इनपुट लेंगे, हमारे अंदर जो भी अंदर जाएगा, संसार को देखना, करना, ऐसा वैसा सब कुछ, तो वो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा, उसका प्रभाव भी मन पर पड़ेगा। तो मन में विकार आने की जो मेजर प्रक्रिया है, जो मेजर प्रोसेस है उसका, वो बाहर से इनपुट आने से ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त सेंसेस की तरफ दौड़ो नहीं, आदत ही पड़ जाती है। मन का ज्यादा डिस्टरबेंस चित्त से आई हुई वृत्तियों से तो इतने मतलब गहराई की बात है कि वो चित्त से आई हुई वृत्तियों से तो जो होना था वो तो होगा ही, लेकिन जो इंद्रियों से आता है उससे ज्यादा होता है। मन की अस्थिरता बहुत ज्यादा बाहर की इंद्रियों से जुड़ी हुई है, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई है, चित्त से उतनी नहीं। ठीक है, एक सरल भाषा में सरल तरीके से समझने के लिए मैं ये वाली बात आपको बोल रही हूं कि चित्त को उतना नहीं समझना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए उतना। जब भावनात्मक लेवल पे कोई चीज बिगड़ती है तो मन में आ जाती है, लेकिन तब आप बोलते भी हो आज मेरा मूड नहीं है, है ना, या आज मेरा ये करने का मन नहीं है, आज मेरा वो करने का मन नहीं है, आज मेरा यहां जाने का मन नहीं है, आज मेरा ये पढ़ने का मन नहीं है, तो वो वृत्तियां बिगड़ी हैं और वो हो गया, या तो वो वृत्तियां अंदर से बिगड़ी हैं और कोई मन में अस्थिरता आ गई है, या फिर आपकी इंद्रियों ने कुछ देख लिया जिसकी वजह से, देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ सूंघ लिया, कुछ पढ़ कुछ क्या बोलते हैं टेस्ट कर लिया, या कोई स्पर्श ऐसा कर लिया जिसकी वजह से आपका मन में अस्थिरता आई हुई है। ठीक है, तो वो वाली बात को कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक मोबाइल देख लिया, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, बट आपके दोस्त ने एक नया मोबाइल लाके आपको दिखाया कि देखो ये कितना अच्छा मोबाइल है, कितना महंगा मोबाइल है और ये कितना अच्छा है। अब आपके मन में कामना जागी, मन में देख रहे हो आप ऊपर काम है, कामना क्या जागी, पहले तो लोभ आया, लोभ से कामना जागी कि बस मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि मैं भी ये वाला मोबाइल खरीद लूं। अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लोगों के अंदर एक दूसरे के घर को देख के आ जाती है कामना, है ना, कि बताओ ये इतने अच्छे घर में रह रहा है, लोभ है तो ईर्ष्या भी जागेगी, लोभी इंसान ही ईर्ष्यालु भी होगा, जिसके अंदर लोभ नहीं है वो ईर्ष्यालु नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसके मन में ये नहीं जाग रहा कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, तो लोभ नहीं है उसके अंदर। तो अब ये वाली बात आती ही नहीं है कि इसके पास क्यों है, तो वो ईर्ष्या हो गई, है ना, तो ऐसे ईर्ष्या नहीं जागती अगर लोभ नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई मन में विकार है, लोभ का ये 6 विकार बने हुए हैं, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को के अंदर वो कामना जाग गई कि मेरे पास भी ये घर होना चाहिए, तो अब वो घर को पाने के लिए, उतना पैसा रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी टेढ़े मेढ़े काम कर सकता है। ठीक है, तो काम, अब हम 6 विकारों को अगर डिस्कस करें तो काम हम कहते हैं इच्छा को, या आप ऐसे समझ लो कि काम को, काम का सीधा मतलब वो नहीं होता, काम वासना वो वाली चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं कि सेक्सुअल हो जाना, सेक्सुअल अर्ज रखना, वो भी एक प्रकार की काम वासना है, एक प्रकार की कामना है, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन और बहुत सारी कामनाएं हो सकती हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनने की वो भी एक कामना है, करियर में कुछ बनने की, कुछ पढ़ने की कामना भी हो सकती है, या कोई ऐसी कामना भी हो सकती है कि किसी को छेड़ दो, है ना, किसी को परेशान करो, किसी से दुश्मनी करते, ऐसे दुश्मनी के वजह से भी, द्वेष की वजह से बहुत सारी कामनाएं हो सकती हैं। तो कामनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, कामना होना, बहुत ही ज्यादा कामनाएं होना इंसान के अंदर, वो भी मन में अस्थिरता रखता है। हम कहते हैं ना इच्छाओं को कम करो, इसलिए, और वो भी ऐसी इच्छाएं जिनका अंत सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख देने में है आपको, ऐसी इच्छाओं को कम करो। ऐसी इच्छाओं को, ऐसी कामनाओं को कम करने के लिए नहीं कहा जाता, जैसे कि अब आप बार बार रेंट पे रहते रहते हैं, किराए के घर में रहते रहते हैं और आपके मन में है कि मैं एक जगह बार बार ये घर बदलना पड़ता है, कभी मकान मालिक से झगड़ा होता है, और मुझे अपनी साधना तपस्या में नहीं कर पाता हूं, या पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, या मैं जीवन को अच्छे से चला नहीं पाता हूं, तो चलो मैं एक घर खरीद लेता हूं। ठीक है, तो उसको खरीदने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए मैं वो इतने टाइम में जोड़ लूंगा, तो ऐसी एक इच्छा है कि मैं फ्यूचर में एक घर बना लूं अपना। ठीक है, तो ये कैसी कामना है, ये इंद्रिय सुख के लिए नहीं हो रही है कामना, ये कामना किस लिए हो रही है कि इस शरीर को एक जगह पे स्थिर रखा जा सके, जहां पर उसे जो चाहिए मिनिमम सी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती हो, कि खाना बनाया जा सकता है, अच्छे से रहा जा सकता है, एक घर के अंदर सारी चीजें पूरी होती है, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन और एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल लेने चल दिए क्योंकि वो वाला अच्छा लग रहा है, जरूरत है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, इंद्रिय सुख मिल रहा है उससे, तो ऐसी कामना, तो कोई भी ऐसी कामना रखना जो कि इंद्रिय सुख को सिर्फ पूरा कर सकती हो। अरे घर में खाना बना था आप खा लेते, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में कोई और खाना घूम रहा है जिसको बनाने में आपने या तो 4 घंटे लगाए या कहीं खाने जाने में आपने 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए कि नहीं मुझे उस होटल का ये खाना, वो वाली चीज खानी है, तो अरे पेट भरने वाली बात थी तो खा लिया होता आपने, लेकिन अब आप किसके पीछे भागे, इंद्रिय सुख के पीछे भागे। तो कोई भी ऐसी कामना रखना जो कि इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई है उसे हम बुरा मानते हैं, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्रियों को प्रताड़ित कर दो, इतने टॉर्चर ही कर डालो, है ना, कि अब आप कोई कूड़े के ढेर में नहीं रह लोगे जाके। क्यों? कि अब आपकी इंद्रियां प्रताड़ित होंगी, बदबू आएगी कूड़े में से, कूड़ा कूड़े घर के पास कई सारी जगह अब वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो कूड़ा घर तो होता ही है सारे, हर कंट्री में, हर शहर में, हर सब जगह, हर स्टेट में, सब जगह ही कूड़ा घर होते हैं। कूड़े घर के पास जरा घर घर लेके देखो किसी के, या बेचारे ने पहले घर लिया, अब 10 साल बाद वहां पे कूड़ा घर बन गया, तो अब वो इंद्रियां प्रताड़ित हो रही है। तो ऐसी जगह पर भी नहीं रहा, ऐसा भी कोई काम नहीं करना जहां इंद्रियों को प्रताड़ना मिल रही है। इंद्रियां जिस चीज को सुख समझती हैं, मनस के अंदर सुख भी जाता है। तो इंद्रिय सुख क्या है कि भाई इंद्रियों का प्रताड़ित ना होना इंद्रियों का सुख है। एक बार को फूल पौधे देखने को ना मिले इंसान को, या फूलों की खुशबू सूंघने को ना मिले, लेकिन एटलीस्ट बदबू तो ना सूंघनी पड़े, ठीक है। तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फूल नहीं है, पौधे नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर वातावरण नहीं है, कोई बात नहीं, साफ सुथरा है, ठीक। तो इंद्रियां प्रताड़ित नहीं होंगी। तो इंद्रियों को प्रताड़ित नहीं करना होता, ठीक है। रस ठीक है, खाना खा रहे थे, करेले कड़वे ही होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं तो खा लिए। इंद्रियों को प्रताड़ित नहीं करना कि ठीक है अब तो तुमको सिर्फ मीठा ही खाना है तो हम तुमको खाना ही नहीं देंगे। अरे कोई सा भी रस नहीं देंगे क्योंकि तुमको सिर्फ मीठे में रस आता है तो प्रताड़ना हो गई, वो भी नहीं करना। ठीक है, कोई हर वक्त कोई अच्छा म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, जो चीज आपके अकॉर्डिंग म्यूजिक होती हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई आपको बहुत अच्छा म्यूजिक हर वक्त सुनाई दे रहा हो या अच्छी अच्छी ध्वनियां और चीजें सुनाई दे रही हो, लेकिन कर्कश आवाज और शोर भी तो ना सुनाई दे रहा हो, तो वो इंद्रियों का प्रताड़ना हो गई। तो इंद्रिय सुख उतनी मात्रा में तो होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि शरीर को मन को ये ज्ञान हो सके कि मैं इस जगह में सेफ हूं, सिक्योर हूं, कोई मेरा किसी तरह का मेरा उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये वाली बात बच्चों पे और बहुत सारे आगे जो टीनेजर है वो लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। क्यों? उनका इंद्रिय सुख तो सोने में है, या उनका इंद्रिय सुख तो ना पढ़ने में है, टीवी देखने में है, तो क्या देखने देंगे? नहीं। तो हर चीज की एक लिमिट है, तो इंद्रिय सुख की एक लिमिट है। तो यहां पर यही बात समझाई जा रही है कि प्रत्याहार का मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, कुछ सुनो ही मत, या जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर लो, कुछ और ही ढंग से इंटरप्रेट करने लग जाओ, उसे प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि ऐसी कामनाएं, अभी हम एक ही विकार की बात कर रहे हैं ना जो पूरे मनस के अंदर, वो है कामना। तो ऐसी कामनाओं को कम रखना अपने अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंद्रियों की सुख की पूर्ति के लिए होती है, उनका और कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब बहुत सारे लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, मैं भी लगाती हूं, बहुत सारे लोग फूल के ही पौधे लगाते रहते हैं। हाँ, फूल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। आप इतना मिट्टी में काम करोगे, दिन भर आपकी बॉडी में से नेगेटिव आयंस निकलेंगे और ये सारी चीजें होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका। तो इंद्रिय सुख के लिए नहीं किया जा रहा है गार्डनिंग। गार्डनिंग किस लिए की जा रही है कि उसमें सिर्फ इंद्रियों का सुख ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है। ऐसे ही घर, घर इसलिए नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा सा बेड, अच्छा सा घर इसलिए नहीं चाहिए होता कि बस बैठे रहे हैं और घर में ही घुसे, नहीं, ऐसे कौन करता है, ऐसे काम कैसे करेंगे, बाहर जाके काम करना है, इतने सारे काम है, कितना ही अच्छा आपका बेड हो, कितना ही अच्छा घर हो, हर वक्त घर का सुख उठाया कहां जा सकता है, नहीं ना। तो एक सेफ सिक्योर अच्छी जगह में आपका घर है, आप वहां पर सुरक्षा से सुरक्षित महसूस करते हो, तो आपका दिमाग फालतू चलता नहीं है और चार चीजों में आप सुरक्षा से अच्छे से रहते हो, तो घर का ये पर्पज हो गया। तो कोई कहे कि आप बड़े बड़े घर में इंद्रिय सुख की वजह से रह रहे हो, नहीं, इंद्रिय सुख की वजह से नहीं रहते हैं, ठीक है। वो घर कुछ और भी दे रहा है, उसकी वजह से ऐसे ही खाना खाने में है। एक अच्छा साफ सुथरे बर्तनों में साफ सुथरे मन से पकाया हुआ अच्छा सा भोजन अगर आप कर रहे हो तो इंद्रिय सुख की बात नहीं है, स्वास्थ्य लाभ है उसके अंदर, जीवन की सुरक्षा है उसके अंदर, जीवन का और शरीर का बीमारियों में ना घुस जाना वो सब कुछ है उसके अंदर। तो समझ रहे हो कि किसी कामना कामना का आपकी पूर्ति कामना जो आपको जो भी कामनाएं इच्छाएं आपके अंदर है वो सिर्फ आपके इंद्रियों की सुख के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई और भी लाभ होना चाहिए। उस इंद्रिय सुख से बड़ा कोई और लाभ आपको दिखाई देता है अगर अपनी कामना में, तो अवश्य रखो उस कामना को, ठीक है, उस कामना को जरूर पूरा करो कि अच्छा उतना पैसा होना चाहिए कि मैं एक साल की छुट्टी लेके और सिर्फ अपना योग ध्यान तपस्या कर सकूं, ठीक है, तो पैसा कमा लिया, तो आप पैसा कमा रहे हैं जाके, कोई कहे सामने से देखने वालों को क्या लगेगा, अच्छा बताओ हर वक्त पैसा पैसा करता रहता है, जब देखो जब एक नौकरी कर रहा है, दो नौकरी कर रहे हैं, चार नौकरी कर रहे हैं, नहीं, वो अपना नौकरी करके पैसा जोड़ के अपना टाइम समय खरीद रहे हैं कि जब वो नौकरी नहीं करेंगे तो भी अपनी जीवन यापन कर पाएंगे, तब भी उनके सारे बिल्स पे हो जाएंगे, तब भी उनको सब कुछ उनके पास इतनी सेविंग्स हो जाएंगी, इतना पैसा वो जोड़ लेंगे कि फिर अगर उन्होंने दो साल एक साल काम नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके उनके बच्चे पलते रहेंगे, घर के खर्चे पूरे होते रहेंगे, हारी बीमारी के लिए पैसा रहेगा और सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी कामनाएं, तो मन को अस्थिर कौन सी कामनाएं करती हैं जो सिर्फ इंद्रिय सुख से जुड़ी हैं? क्यों, एक बार अच्छा खाना या किसी एक होटल के खाने को खाने की या कोई एक डिश खाने की कोई एक वैरायटी खाने की आपने आदत डाल ली, अब मन में जा खाना घर में है, बन सकता था, खा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, समय उतना बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, फिर गए उस खाने को खाने, फिर गए उस खाने को खाने, बार बार उस चीज की तरफ भाग रहे हैं। क्यों, जब वो खाते हैं तो बहुत इंद्रियों को सुख मिलता है, चाहे भले ही वो हेल्थ के लिए अच्छा है खाना चाहे नहीं है, तो इंद्रिय सुख की इतनी आदत पड़ गई कि अब वो वाली डिश वो वाला खाना ना खाएं तो फिर सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती, फिर ऐसा लगता ही नहीं है जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। अरे ऐसा कैसे होता है, नहीं होता है ना ऐसा, तो इंद्रिय सुख की तरफ भागते रहना, ऐसी कामनाओं की का इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। क्यों, एक इंद्रिय कोई भी इंद्रिय है आपकी 10 मिनट खुश हो लेगी उस चीज से, 15 मिनट खुश हो लेगी, खुश हो लोगे आप उस चीज से, लेकिन अगर सीरियसली एक ही खाना आप उस दिन सुबह दोपहर शाम बिना कोई चीज किए हुए 3 दिन खिलाया जाए, 4 दिन खिलाया जाए, तो आप 5वें दिन उस खाने से इतनी दूर भाग जाओगे कि आपको लगेगा कि बस कुछ भी हो जाए ये खाना मत दिखाना मुझे, चाहे भले अभी कुछ दिन पहले तक आप उस खाने के लिए इतना वक्त बर्बाद कर रहे थे जाए, तो इंद्रियों की लिमिटेशन है ना, इंद्रियां इतना सारा 10 मिनट सुखी होती है और फिर उसके बाद उसी चीज से प्रताड़ित भी होती है, तो ये इंद्रियां बाय नेचर है ही ऐसी, जो बाहरी अंग है हमारे वो है ही ऐसे, थोड़ी देर तक वो चीज अच्छी लगती है उसके बाद, एक ही गाना कितने दिन सुन लोगे जब तक बीच में गैप नहीं लाओगे उसको कि अच्छा ठीक है अब 1 महीने नहीं सुनेंगे, 1 महीने लगातार सुन लिया तो उसके बाद थोड़े दिन बाद तो सुनाई ही देना बंद हो गया, पता चला वो बैकग्राउंड में बज भी रहा है तो भी सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंद्रियों की सुख की लिमिटेशन, इंद्रियों को कोई भी चीज लगातार नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो काम में उन कामनाओं को ना रखना जिनका कि इंद्रिय सुख से इंद्रियों के उत्पीड़न से तो लेना देना है, तो लेकिन इंद्रिय सुख से उतना लेना देना नहीं है, कोई चीज खाने में टेस्टी है चाहे नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो खा लेना, इसको कहते हैं ऐसी कामना को, ऐसी प्रैक्टिस को प्रत्याहार कहा जाता है, ठीक, कि वो इंसान ऐसी कामनाएं ही नहीं रखता जो सिर्फ इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई थी। हाँ ठीक है, गार्डनिंग करना, बाहर पेड़ पौधे लगाना, चाहे सर्दी वाली जगहों पे लोग रहते हैं या सड़ी गर्मी वाली जगहों पे लोग रहते हैं, वहां पर खेती किसानी करना या कुछ भी करना बहुत ही कष्टदायी काम है, बहुत ही तकलीफ का काम है, फिर भी कर रहे हैं, क्यों, अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और जो भी कुछ फल फूल सब्जी पौधे हो गई उनको खाना भी अच्छा है ना, तो कर रहे हैं, तो वो भी इंद्रिय जय होने का प्रमाण है। तो इस तरह से कोई चीज सिर्फ इंद्रिय सुख की दृष्टि से हर काम को जीवन में करना ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ कई बार हम आप देखो कई बार मालिश कराने जाओ, बूढ़े हो जाते हैं शरीर में तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अभी कोई हमारे हाथ पैर दबा दे, और पहले के बच्चे तो हम लोग नानी दादी तो हमको अपने पैरों पे चलाते थे और उससे हमको 1 रुपया मिलता था, कभी शुरू शुरू में 10 पैसे मिलते थे हमको, या फिर हमको कहानी सुनाई जाती थी अगर हम नानी दादी के पैरों पे चल रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं या कोई सेवा कर रहे हैं उनको, तो हमको जो है उसे सेवा करवाई जाती थी, तो हम करते भी थे। अभी तो ऐसा नहीं है, कहाँ से, तो अभी तो नहीं है कोई भी ऐसे करने वाला, तो आप मालिश कराने जाओगे। अब कई बार मालिश जो होती है, या आप बाहर के कंट्रीज में रहते हो तो आप कायरोप्रैक्टर के पास जाओगे, तो कायरोप्रैक्टर जो है वो क्या करेगा, आपका यहां से हाथ चटका देगा, वहां से कोई मसल चटका देगा। अब आप जब वहां से मालिश करा के या कायरोप्रैक्टर के पास से आओगे ना, तो आपके पूरा शरीर में दर्द ही दर्द हो रहे होंगे। आराम कराने के लिए मालिश कराने नहीं गए थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मालिश कराने लगे। तो स्पर्श से दुखा रहा है, कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी है वो वाली चीज, तो उसको कर रहे हैं। सेम चीज दवाई खाने में, सही आहार खाने में होती है। तो रस का कितना ज्यादा संबंध है, रस का काम ये नहीं था कि आप किसी एक रस के आदि हो जाओ, है ना। मैं तो मीठा ही मीठा खाता रहूंगा, मीठा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, कभी मीठा भी खाओ, कभी तीखा भी खाओ, कभी सारे तरह के स्वाद खाओ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो खाओ, है ना। तो वो प्रत्याहार है कि सामने कितनी ही टेस्टी चीज पड़ी है, अगर मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, और सामने कितनी ही कैसी ही कोई टेस्टी चीज पड़ी है, मेरी फेवरेट चीज भी पड़ी है, सामने रख दी गई है, लेकिन मेरा पेट भरा है और पेट में जगह नहीं है, तो मैं खा ही नहीं सकती उस चीज को, वो प्रत्याहार है, ठीक है। तो प्रत्याहार को ऐसे देखना है जो रस की इंद्रिय से जुड़ा है। रूप की इंद्रिय से जुड़ा है तो मैंने आपको बता ही दिया कि सब कुछ जरूरी नहीं है बाहर सामने अच्छा दिख रहा हो या सब कुछ खूबसूरत दिख रहा हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आंखों का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए। तो रूप की इंद्रिय का क्या चीज है, ज्ञान भी रखना चाहिए, कोई अच्छा दिखता है चाहे नहीं दिखता है, या कोई चीज देखने से कॉटन के कपड़े इतने शाइनी इतने अच्छे से नहीं दिखते हैं, लेकिन कॉटन पहनना शरीर के लिए अच्छा होता है आपके लिए, है ना। या फिर सर्दियों में जो एक्चुअल में प्रॉपर वूल जिसे हम कहते हैं, ऊन जिसे हम कहते हैं, उससे बने हुए कपड़े उतने सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छे हैं, है ना। बहुत सॉफ्ट सी वूल होती है कोई चीज है, तो वो शरीर के लिए अच्छे हो सकते हैं कोई भी चीज। तो स्पर्श की इंद्रिय हो गई आपकी। ऐसे ही सूंघने में, जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो जितने काढ़े बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, वो बहुत अच्छी खुशबू नहीं आ रही होती उसके उसके अंदर से, काढ़ों में से कई बार तो सूंघने से ही पता चल जाता है कि ये एक्चुअली जो है कड़वा है, ये सूंघने से स्मेल से पता लग जाता है हमें कि ये कड़वी चीज है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी कोई कामना ना रखना जो सिर्फ इंद्रिय सुख की पूर्ति करती हो, उसके और भी कोई लाभ होने चाहिए। तो वो उस तरह से कामना के लेवल पे हम कहते हैं कि ये प्रत्याहार है। हम मन के विकार, मन के दोष डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज है। तो कामना से काम समझ लिया अब आपने, अब हम बात करते हैं लोभ की। लोभ आया कहां से? बाहर से भी आ सकता है लोभ, है ना, इंद्रियों से आ सकता है लोभ। कैसे आता है इंद्रियों से लोभ, कैसे आता है कि अब वो नया मोबाइल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कोई हाईफाई चीज है, तो आपके दिमाग में वो चीज कहां से कनेक्टेड है कि हाँ देखो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा मोबाइल रखते हैं, तो ये अमीरी की निशानी है। तो आपके मन में लोभ आया कि हाँ ठीक है, अब तो ये मुझे भी चाहिए, अब तो ये मैं भी लूंगा। अच्छा, अब वो मैं मोबाइल का एग्जाम्पल दे रही हूं, आप घर पे अप्लाई कर लो, आप कार पे अप्लाई कर लो, जो आप कार खरीदते हो, कार चलाते हो, उसके ऊपर अप्लाई कर लो, आपके पास कोई भी चीज है घर के अंदर, है ना, तो वो लोभ पैदा कर सकती है। तो लोभ बाहर से भी आ सकता है ना। और लोभ कहां से आ सकता है? अंदर से भी आता है। चित्त में जब मोह की वृत्ति बिगड़ी, मोह से क्रोध पैदा हुआ, क्रोध पूरा, मोह से लोभ पैदा हुआ, लोभ पूरा नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है। वो जो भावनाओं वाला वीडियो था, मैंने उसमें समझाया ना आपको। तो लोभ जब बन गया तो मोह है, शरीर से मोह है, इंद्रियों के सुख से मोह है इतना, और चित्त में मोह बैठा हुआ तो किसी भी चीज से मोह ही होगा, तो मोह बाद में लोभ ही बनेगा, ठीक है, आपको लोभ ही बना देगा। तो लोभ क्या होगा? मन के स्तर पर आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में हर चीज का लोभ चलता है, हर चीज का आपको लालच आता है, और कुछ चीजों को लेकर आप अति के लोभी हैं। कुछ लोग खाने को लेकर बहुत अति के लोभी होते हैं, वो खाने को लेकर फिर उतने ही कंजूस भी होते हैं, है ना। लोभ क्या है? उस चीज को जोड़ना, उस चीज को रखना, चाहे भले ही उसका यूज करो चाहे नहीं करो, या उस चीज का कोई, कितने सारे लोग पैसे को लेकर ऐसे होते हैं, इतने लोभी होते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे से ठीक से जीवन जीने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, अपना अकाउंट में जोड़ जोड़ के रख रखा है, लोभ है उन्हें, ठीक है। लोभ कहां से आता है? वो बाद में, वो अभिनिवेश, डर है, डर बन जाता है वो, है ना। फिर उसके बाद आता है मद। मद कहते हैं हम कि अहंकार में रहना, ठीक है, अपने किसी उसमें रहना हर वक्त जल्दी से मदमस्त रहना, मदमस्त रहना कहते हैं, जैसे कि अपने ही अहंकार में हर वक्त अपने अहम में डूबे रहना, मैं बस मैं ही मैं हूं तो दुनिया में और कुछ है ही नहीं, ऐसे करके अहंकार में रहना, तो वो चीज बोली जाती है। तो प्रत्याहार लोभ के स्तर पे आप कैसे करोगे कि ठीक है खाना है मिल गया, ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, लोभ नहीं आ रहा है उस चीज का, उसको उस एक चीज को खाने का। ऐसे खाने की तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, किसी भी चीज को लेकर लोभ नहीं आ रहा है कि ठीक है किसी को कुछ मिल गया तो मिल गया, लोभ नहीं आएगा तो ईर्ष्या भी नहीं जागेगी, सिर्फ लोभी इंसान में ईर्ष्या जागेगी, है ना, तो ये दोनों चीजें मिसिंग हो जाएंगी। तो प्रत्याहार किस लेवल पे हो जाएगा, इंद्रिय सुख के लेवल पर कामना नहीं है तो लोभ होगा ही नहीं, है ना। लोभ कैसे रख लोगे आप अगर इन कामना ही है फिर, क्योंकि लोभवश कामनाएं जागती हैं या कामनावश लोभ भी जागता है, उल्टा भी होता है, दोनों तरफ चलती है ये साइकिल, ठीक है। ऐसे ही मद हो गया, अब हो गया हर्ष। हम कहते हैं कोई व्यक्ति जैसे हर वक्त हर्षित उल्लासित होता रहता है, तो ये हम ऐसे हर एक चीज होती है आनंद, है ना, एक चीज होती है शांति, एक चीज होती है आनंद, और हर्ष मन के स्तर पे होने वाली चीज है। हर्षित आदमी कैसा होता है, जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है किसी भी बात के लिए, अब कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ सोचा नहीं, कुछ करा नहीं, और जल्दी से एक्साइटेड होके और कोई भी एक्शन ले डाला उस चीज के ऊपर। हर वक्त हर्षित, हर वक्त कोई अजीब से हर्षित उल्लासित, मद और हर्ष एक साथ चलते हैं अधिकतर, तो कुछ ओवर एक्साइटमेंट में रहना सारा टाइम, है ना, कोई भी चीज के को लेकर जल्दी से को फटाफट से तुरंत से रिस्पॉन्ड कर दे, रिएक्शन में जाना। मद और हर्ष में रहने वाले लोग रिएक्शनरी होते हैं, क्योंकि मन में से होने वाले ये दो ही सबसे बड़े रिएक्शन है और खतरनाक रिएक्शन है। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान की किसी भी चीज की कोई बात हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो या तो हर वक्त अपने मद में रहता है या फिर अपने बहुत ही हर्षित उल्लासित ओवरली एक्साइटेड रहता है ना, ओवरली एक्साइटेड अच्छे तरीके से भी बुरे तरीके से भी, दोनों ही तरह के एक्साइटमेंट हो सकते हैं उसमें, और हर्षित उल्लासित हर वक्त इतना रहता है कि जल्दी से कुछ कहा ही नहीं बोलने का है बोल दिया किसी से भी कुछ भी, है ना, और कोई एक्शन में सोच समझ के लेना चाहिए था लाइफ का कोई डिसीजन कोई एक्शन, लेकिन नहीं, इतने हर्षित उल्लासित टाइप थे आगे कुछ सोचा ही नहीं, किसी चीज को करने के 5 स्टेप थे, 5वें पे पहले पहुंच गए, पहले के 4 करे नहीं, तो डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है ना, क्योंकि मन में हर वक्त एक्साइटमेंट से काम कर रहे हैं, इंस्टेंट के रुक जाते मन में थोड़ा सा कंट्रोल होता तो बुद्धि से काम लेने की, बुद्धि से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं ना, अगर मन के हर्ष और मद से रुक जाते तो बुद्धि चलाते, लेकिन बुद्धि तक तो पहुंची ही नहीं बात, फटाक से जाके ये कर लिया, फटाक से जाके ये कर लिया, सोचा नहीं समझा नहीं। अब सोचने समझने का ये मतलब नहीं है कि कोई काम जो 3 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए आप 3 साल लगा दो प्रोक्रास्टिनेट करने को नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है कि सोचते ही रहो, करो मत कुछ, इतना सोचो नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हर्षित उल्लासित लोग जो हैं उनकी डिसीजन मेकिंग हमेशा गलत हो जाती है, और बाद में यही वो लोग हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरी लाइफ के सारे निर्णय गलत कैसे हो गए, क्योंकि शायद वो निर्णय हर्षित उल्लासित तरीके से लिए गए होंगे या फिर उतना सारा ज्ञान नहीं होगा जिसके की बेसिस पे वो डिसीजन लिए गए होंगे या जो भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों का जो बहुत अजीब से एक्साइटेड से रहते हैं वो ठीक डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, और उन वो लाइफ में उनका जो जीने का तरीका है वो अक्सर सिर्फ भिड़ते रहते हैं, ठीक है, इधर भिड़ गए उधर भिड़ गए उधर भिड़ गए, सोच नहीं रहे कुछ और, सोच के कोई चीज नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइफ में ना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, तो लाइफ में इतने रिएक्शन मत दिखाओ, इतनी प्रतिक्रिया मत दिखाओ, प्रतिक्रियात्मक आप होते कब हो, अगर हम ऐसे शॉर्ट तरीके से बात करने की कोशिश करें तो प्रतिक्रियात्मक आप तभी होते हो जब आपके मन के अंदर मनस के अंदर ये सारी चीजें हैं, काम लोभ मद हर्ष मान क्रोध, ये सब जब काम कर रहे होंगे आपके अंदर तो आपकी हालत प्रतिक्रियात्मक होगी ही होगी, आप रिएक्शंस में जाओगे ही जाओगे और आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। एक चीज है रिएक्शन देना और एक है किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना, वो आपके अंदर वो क्षमता होगी ही नहीं, क्योंकि आपका मनस जो है वो, आप इंद्रिय जय नहीं हो, आपके अंदर प्रत्याहार नहीं है, आप हर्ष और मद और को काम और क्रोध और लोभ और मोह ये सब चीजों से चलते हो। तो मन आपका बहुत चंचल है, बहुत ही चंचलता है मन के अंदर, अस्थिरता है मन के अंदर, है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं कि रिएक्शन नहीं देना चाहिए इतना जल्दी से, फटाक से ओपिनियन दे देते हैं कुछ लोग जल्दी से। अरे भैया तुम रुको, पहले ध्यान से समझो, पहले चीजों को मन को स्थिर रख पाओगे तब कोई इनपुट बुद्धि में जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। कोई भी चीज बुद्धि तक नहीं जा रही है अगर बीच में मन में एक दलदल बना रखा है, दलदल जैसा क्रिएट कर रखा है। और दलदल में क्या है, ये सब चीजें, ये जो छह विकार हैं, ये दलदल बना रहे हैं। तो ये ऐसे गहरी सी जगह बना ली कि अब सब कुछ यहीं से होता रहता है, बुद्धि तक तो कुछ जाता ही नहीं। तो बुद्धि जैसी थी, जड़ थी, तामसिक बुद्धि थी, कुतर्की बुद्धि थी, वो ऐसे ही है, क्योंकि बाहर से कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी सूंघते हैं, या कोई भी इनपुट आता है वो इसी दलदल में आके रह जाता है बस। तो ऐसे लोगों को सिखाया जाता है सांस लो, रुको, थम जाओ, रिएक्शनरी मत बनो। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि रिएक्शन नहीं दो, रिस्पॉन्ड करो लाइफ को। तो लाइफ में सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करा। अरे बच्चा गिर गया, फटाफट बच्चे के स्कूल से फोन आया, बच्चा गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई है और खून लग गई है, तुरंत प्रतिक्रिया आई अंदर से निकल गई, कैसे स्कूल वाले हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, कैसा स्पोर्ट्स का टीचर है, ध्यान क्यों नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मैं अपने बच्चे को निकाल लूंगा इस स्कूल से। और गए स्कूल में और टीचर को खरी खोटी सुना के आ गए और चिल्ला के आ गए टीचर को। अब बाद में घर आए और बच्चा बता रहा है कि बच्चे को डांट रहे हैं, बच्चे को भी डांटे जा रहे हैं कि ठीक से नहीं देखते हो, खेल नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। फिर बच्चा बाद में बता रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मैं जबरदस्ती ऊपर झूले पे नहीं चढ़ना चाहिए था मुझे, और मैं फिसल गया, गिर गया। बच्चे को भी अब चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, प्रतिक्रिया कितनी खतरनाक प्रतिक्रिया हो गई। अरे ठीक है, टीचर को पूछते पहले कितनी चोट लगी है, टाके आ गए क्या, टाके लगवाने की जरूरत है, नहीं है, पट्टी कर दिया आपने, ठीक है, बच्चे को बोलो क्लास में बैठेगा, जब स्कूल की छुट्टी होगी मैं आऊंगा, क्या इतनी परेशानी की बात है। कितना हम बाहर खेलते हैं और कुछ भी करते हैं तो चोट लग जाती है, यहाँ पैर में घुटने में चोट लग जाती है, कितनी चोटें लग जाती हैं, कितनी हड्डियां टूट जाती हैं, कितना क्या हो जाता है, लेकिन इतना प्रतिक्रियात्मक होना, छोटा सा बच्चे को छोटी सी बीमारी या कोई छोटी सी चीज हुई, या खुद के किसी घर परिवार जनी को कुछ हुआ, बहुत गहरी चिंता हो गई, बहुत सारा दुख बना लिया उस चीज से, क्योंकि इतना प्रतिक्रियात्मक है, हर बात में प्रतिक्रिया हो रही है। ये हर्षित उल्लासित होने के, इतना हर्षित और मद में रहने के, हर्ष और मद होने की अति है ये, कि आप सामने जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको ठीक से देख ही नहीं पा रहे, बुद्धि तक कुछ जा ही नहीं रहा आपकी। बुद्धि तक जाता होता ये बीच में दलदल में नहीं फंसे होते, और ये दलदल आपके अंदर नहीं होता तो क्या होता, हर बात बाहर से लिया हुआ हर इनपुट सीधा बुद्धि में लैंड करता, सीधा बुद्धि में आ जाता, चेतना बुद्धि में केंद्रित है ना। तो सारा इनपुट पहले बुद्धि तक आता, फिर हम सोचते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसा हो गया तो चिंता करने की और दुख बनाने की या चीखने चिल्लाने की या ये छह जो विकार हैं मन के उसमें फंस जाने से क्या होगा, कौन सी सिचुएशन सॉल्व होती है लाइफ की ये छह में फंस जाने से, नहीं, बल्कि आप सीधी सीधी चीजों को भी उल्टा समझने लग जाते हो। अगर आपके अंदर ये मन जो है, आपका मनस जो है वो एक दलदल स्वरूप हो चुका है, तो फिर आप हर सही बात, कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना कि ये तो हर सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढ देते हैं ऐसे बोला जाता है ना कि अरे ये इंसान तो ना सॉल्यूशन को में से भी प्रॉब्लम ढूंढ लेगा, तो ऐसा करो इससे इतनी देर बात नहीं कर सकते। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मनस जो है वो दलदल हो गया किसी का, और वो आदमी इतना प्रतिक्रियात्मक हो चुका है कि बस उसके उस दलदल में से फायरिंग हो रही लगातार हर सिचुएशन के ऊपर लाइफ की, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम ढूंढे जा रहा है, या हर चीज लाइफ में उसको प्रॉब्लम ही लगे जा रही है, सिचुएशन को भी प्रॉब्लम के जैसे डील करना, तब वो चीज क्या कहलाती है कि अरे ठीक है परिस्थिति है किसी की, कोई भी चीज है परिस्थिति है, कुछ करोगे, कुछ ऐसे ऐसे आइडिया लगाओगे तो बुद्धि से चलोगे तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, सही कर्म करते हुए आगे जाते रहोगे तो ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। उसके ऊपर से ये छह विकार मन में हो तो करने नहीं देंगे वो चीज। तो इसीलिए प्रत्याहार रखना, मद में और हर्ष में नहीं घुसना, नहीं उसके वो भी वो प्रत्याहार है। ये दो चीजों से लाइफ में इतने रिएक्शनरी ना होगा। अब रिएक्शनरी हो गए तो ऑब्वियस सी बात है दो चीजों के लिए आपको बहुत अच्छे से भड़काया जा सकता है। पहली चीज है मान। मान क्या है? बहुत सारे लोगों को आजकल जो है सम्मान चाहिए, है ना, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। या वो एक्चुअली उसे तो सम्मान तो तब कहलाता है जब वो बाहर से कोई दूसरा दे रहा हो, लेकिन उनकी नीड अपने आप के अंदर मान की है। लेकिन वो अपने आप को तो दे नहीं पाते, अपने आप से तो उन्हें मिल नहीं रहा वो मान, तो उनकी अपेक्षा किससे हो जाती है? तुम पैर छुओ मेरे, ठीक है, तो किसी ने छू दिए तो वो अच्छा आदमी है, जो नहीं छू रहा वो बुरा आदमी हो गया। या फिर यहां पर मैं काम करता हूं, यहां पर मुझे देखो इतने बड़े बड़े एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है मुझे, और मुझे ये मिलता है, तो मान मिल रहा है, मेरे काम को कोई देख रहा है, पहचान रहा है, मुझे सम्मानित कर रहा है उस चीज से। तो इस बात की आकांक्षा रखना मन में गलत बात है। अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगी कि एक एक चीज का कितना खराब परिणाम होता है और कैसे कैसे लोग समाज में आपको, संसार में आपको देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ये मन के छह विकार। तो ऐसे लोग जो हैं दूसरी कंपनी में चले जाते हैं कई बार काम करने के लिए, क्योंकि जहां वो काम कर रहे हैं उन्हें कोई मान नहीं मिल रहा, कोई भले ही उनको बेचारों को पूरी सैलरी मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी, और जो इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाना था वो भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई, जैसा सिस्टम बना हुआ है वहां वैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनको उनके काम को कोई मान ना मिलना, उनको कोई सम्मानित नहीं कर रहा है। भाई तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, कितने सभी सम्मानित हैं, तुम अकेले क्यों? तो फिर सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे मान के पीछे भागते रहना, तो ऐसे लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कई बार ये वाली चीजें ऐसे भी हो जाती हैं, जैसे कि जो मान चाहते हैं, है ना, वो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब तक उनको कहो कि ये चीज भारत की विद्या है, हमारे योग शास्त्र की, सांख्य की, दर्शन शास्त्र की विद्या है, तो उनके मन में वो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो सिर्फ सब कुछ सिर्फ कूड़ा ज्ञान है, और वो सब उनके हिसाब से ज्ञान भी नहीं है। वो सब कुछ तभी ज्ञान होगा जब वो अमेरिका से आएगा इंपोर्ट होके, या फिर वो सारा ज्ञान जो है बाहर से आएगा, तब हम उसे ज्ञान बोलेंगे, तब वो काम का होगा और तब वो ठीक होगा, क्योंकि अब वो प्रतिष्ठित जगह से आया, तो उनके दिमाग में प्रतिष्ठा बाहर के देशों की है, अपने देश की नहीं। उनके दिमाग में मान और सम्मान बाहर के देश का है, अपने देश का नहीं। तो ये मान की गड़बड़ है ये सारी की सारी। अभी और भी हम उदाहरण से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मान हो गया। अब क्रोध हो गया। क्रोध तो सीधा सीधा समझ में आता ही है कि आप जो है क्रोधी हैं, आपके मन में क्रोध है। अब आप बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं और बात बात पे चीजें करते रहते हैं, और क्रोध कई बार जो है वो इस वजह से भी मन में रहता है, इंद्रियों का विकार है वो क्रोधी होना, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी ये जो छह चीजें हैं, ये आपके आपकी इंद्रियों की क्षमता को कम करती हैं। पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है, कम करती हैं। क्रोधी आदमी क्रोध में देखेगा क्या, सुनेगा क्या? और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये छह की छह बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्दा है, सबसे मोटी लेयर है ये बुद्धि के ऊपर, जो बुद्धि को ढकती है, जो बुद्धि को इस्तेमाल होने में आने ही नहीं देती, यूज ही नहीं करने देती बुद्धि को हमें, वो ये छह चीजें हैं। मन का अस्थिर, इसी चीज को कहते हैं मन का चंचल होना, इसी को कहते हैं मन का अस्थिर होना, इसी को कहते हैं मन का कड़वा होना, दोषी होना, या हम इनको सीधे सीधे मन का विकार कह देते हैं। अब इंद्रिय जय वो इंसान है जिसने प्रत्याहार किया। प्रत्याहार किया का क्या मतलब है? कि उसने काम को इंद्रियों से, कामनाओं को इंद्रिय सुख से जोड़ा नहीं, उसने लोभ को इंद्रिय सुख से जोड़ा नहीं। एक अच्छा वाला लोभ भी कह सकते हैं हम। अच्छा लोभ क्या होगा फिर? तो उसे लोभ नहीं कहेंगे। जैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी सी जिज्ञासा होती है ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान की तरफ जाने की, रोशनी की तरफ पढ़ने की, वो जो एक जिज्ञासा है, वो जो एक लालसा है, वो जो एक लगन है मन के अंदर,
उसे कोई खराब शब्दों में बोलेंगे, अभी तो हम उसे लालसा बोल रहे हैं, या एक मुमुक्षु हो जाना है ना, कि मोक्ष की जिज्ञासा, मोक्ष की प्राप्ति की लालसा है, या मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलते जाना। लेकिन हम उसे लोभ क्यों नहीं कहते? अरे वो इंद्रियों से नहीं जुड़ी हुई ये सब इच्छाएं, इंद्रियों से ये सारा लोभ, अगर आप इन्हें लोभ के जैसे भी देखना चाहते हो तो इंद्रिय सुख से थोड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन लोभ हम किसे कहते हैं? उसे जो इंद्रिय सुख से जुड़ा हो। तो किसी ने अगर प्रत्याहार किया है लोभ के ऊपर, कि उसकी इंद्रिय सुख की कोई भी चीज वो उसको लोभी नहीं बनाती, तो उसके अंदर लोभ नहीं आता उस चीज से, ठीक है, कि मैं इसी को ही, इसी चीज को ही खाता चला जाऊं, यही चीज को देखता रहूं, यही चीज को सुनता और सूंघता रहूं, चाहे भले ही वो चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या कुछ भी है, या ये इतनी ज्यादा कर लूं क्योंकि ये मुझे इंद्रिय सुख दे रही है तो इस चीज को ज्यादा कर लो, तो ऐसे लोभी नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे तो वो प्रत्याहार है मन के लेवल पे। फिर ऐसे ही मद में नहीं रहते हैं, सब कुछ को, हर चीज सब जगह बस मैं, मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ऐसा नहीं करते रहते हैं। तो अहंकार क्या है? अहंकार है अस्मिताओं का बहुत ही बिगड़ा हुआ एक स्वरूप होता है। अहंकार तो एक अच्छी चीज भी कहलाती है हमारे सांख्य दर्शन के हिसाब से, क्योंकि अहंकार ऊपर महत्तत्व से बना होता है। लेकिन अभी जब हम इंग्लिश में जो ईगो आ जाता है उसको, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसे मद कहते हैं। ईगो का सही, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सटीक ट्रांसलेशन जो है वो मद है, अहंकार नहीं या अहम भी नहीं है एक्चुअली, है ना। तो मद है, मद क्या है? पागल ही हो गए बस, मेरे मेरी इच्छाओं की, मेरी सुख की पूर्ति नहीं हो रही तो तुम कैसे रिश्तेदार हो, तुमने मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाया, तुम मुझे अच्छे से रख नहीं रहे हो, तुम मेरी इंद्रियों को सुखी होने के सारे साधन जुटा नहीं रहे हो, और तुम बात कर रहे हो कि लौकी खानी चाहिए क्योंकि तुम मुझे खाना नहीं अच्छा खिलाना चाहते, तुम मुझे लौकी खिला, लौकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, खा लो, शायद आपकी जरूरत हो, है ना। तो रिश्तेदार बेचारा आपके भले की सोच रहा है, कुछ अच्छा खिला रहा है, लेकिन आप किस चीज में पड़े हुए हो कि नहीं नहीं आपके हिसाब से जो खाना अच्छा है, महंगा मिलता है और अच्छा है और घंटों में बनता है और इतना सब कुछ होता है, तभी आपकी किसी ने सेवा करी, तो आपके सेवा करवाने के, सेवा करने के देखो आयाम कैसे है, क्योंकि लोभ है ना। मद में रहते हो आप हमेशा, मैं और मेरा, मेरे बच्चे को किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे मेरे ऐसा, अरे मैं और मेरा सब कुछ, हर वक्त सिर्फ मैं मेरा ये सब कुछ ऐसे करते रहेंगे तो मद में रहने वाली बात है। तो प्रत्याहार का मतलब है दुनिया में, जीवन में चलने का जो आपका तरीका है वो मैं और मेरा से नहीं जुड़ा हुआ। सही बात के लिए अगर किसी रिश्तेदार या आपके पड़ोसी ने आपके बच्चे को डांट दिया, सही बात के लिए कि भाई आपके बच्चे को बहुत भारी नुकसान हो सकता था, किसी गाड़ी का या किसी चीज का नुकसान हो सकता था, बच्चा गाड़ी के नीचे आ सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो अगर उसने सही बात पे डांट दिया या पीट दिया आपके बच्चे को, तो उस बात को इतना बुरा नहीं समझने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा करने की जरूरत नहीं थी वहां पर। फिर वही वाली बात आ जाती है, ये छह के छह बुद्धि के ऊपर पड़े हुए छह कवर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो बुद्धि तक तो बात जा ही नहीं रही, तो क्या सही था और क्या गलत उसका निर्णय हुआ ही नहीं, विवेक से तो काम किया ही नहीं आपने, आपके तो बस सारी चीजें इस दलदल में डूब गई, ये छह कवर में डूब गई, और आपने जाके उस पर रिएक्शन मार दिया, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, अरे ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे हर्ष की बात आ जाती है, जल्दी जल्दी सब जगह पे रिएक्शन 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 रिएक्शन, कोई भी स्टेप को सोचने से समझने से कि क्या चीज करने के बाद क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, नहीं 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 फालतू तो टाइम वेस्ट करे चले जाते हैं। हर्ष हर्ष वाले लोग जो होते हैं ना, इंस्टेंट रिएक्शन दिखाने वाले लोग जो होते हैं किसी भी बात के ऊपर, वो ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में समय के सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं। क्यों? प्रतीक इतने ज्यादा प्रतिक्रियात्मक होते हैं, अच्छी बात के लिए भी बुरी के लिए भी इतने ज्यादा प्रतिक्रियात्मक होते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया इतना सारा टाइम खा जाती है कि अरे सही चीज पर कैसे करना था, वहां बुद्धि तक, फिर बुद्धि तक बात नहीं गई, है ना। बहुत टाइम वेस्टिंग लोग होते हैं जो हब्जे जोर से ज्यादा एक्साइटमेंट और एक्साइटिंग चीजों में रहते हैं कि अच्छा ये करना है, ये तो मैं कल ही कर लूंगा, अब एक साल हो गया हो ही नहीं रहा क्योंकि कर ही नहीं पा रहे, सोचा नहीं समझा नहीं कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस हर्षित उल्लासित हो गए, हाँ ये तो मैं अभी कर सकता हूं, अरे नहीं हो सकता ऐसे। तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। फिर मान के लेवल पे प्रत्याहार हो रहा है ना, तो ऐसे सोचने वाली बात है। अब एक यहां पर एक जरूरी बात यह भी है समझने की कि इंद्रिय जय होना, मतलब कि इंद्रिय जय होने का मतलब होता है ये छह विकार मनस में ना होना, ठीक है। तो प्रत्याहार रखना, प्रत्याहार का मतलब है ये छह चीजों को आगे अगर मन में से उग रही हैं आपके, मन में आ रही हैं आपके, तो उनको हटाना, उनको रोकना प्रत्याहार है। आंखें बंद कर लेना प्रत्याहार नहीं है, कान से सुनना बंद कर देना प्रत्याहार नहीं है। मन में कोई ऐसी कामना जागे जो इंद्रिय सुख से जुड़ी है, उसे रोकना प्रत्याहार है। मन में अगर लोभ जागे तो वहीं अपने आप को रोक लेना प्रत्याहार है। मद जागे, जब दिखाई देने लग जाए सब कुछ बस मैं ही हूं और मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है ऐसा, और जो कुछ है वो सब मेरा है और मेरे किसी चीज को किसी ने हाथ लगाया, तो मद में रहना, मद जागे अंदर मन के अंदर तो अपने आप को रोक लेना, है ना। हर्ष जागे अपने मन के अंदर, प्रतिक्रिया जागे बहुत तेजी से, ओवर एक्साइटमेंट जागे अपने अंदर से, तो रोक लेना अपने आप को। इसका ये मतलब नहीं कह रहे हैं कि खुशी मत हो और मुंह बनाकर बैठे रहो, ऐसे में कह रहे ठीक है, इस बात को ऐसे समझने की जरूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंट रिएक्शन जो आता है ना उसको रोकने की बात की जाती है, हर्ष उसे कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको रोकना प्रत्याहार है। हर वक्त मान मान को लेकर जो आपके मन में चलता रहता है ना कि ये आदमी तो मुझसे सम्मान से बात नहीं करता, चाहे भले बेचारा आपके भले के लिए सत्य बोलता हो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करता वो ये आदमी, तो हर वक्त मान 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 की अपनी जीवन के हर तरीके से, पढ़ने में, लिखने में, हर बात में मान की ही वो पीछे भागते रहना, वो एक गलत बात है। उसको रोकना मनस का कंट्रोल है, वो चीज प्रत्याहार है। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध को रोकना, मन में क्रोध जाग रहा है तो रुक जाओ, रुक जाओ, सांस लो, मत करो, मत प्रैक्टिस करो। क्यों? कि ये छह के छह विकार प्रैक्टिस कैसे होते हैं? इंद्रियों के थ्रू। कोमा में कोई चला जाए, सपोज कोई कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए, तो उसके पास क्या इंद्रियां नहीं है? है। क्या क्या चीज चीज है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल या उसकी चेतना नहीं रही? तो क्या चीज है वो? बाह्य गोलक हो गए ना ये, तो अब वो आदमी क्रोध कैसे दिखाएगा? है ना, नहीं दिखा सकता। सोता हुआ आदमी भी नहीं दिखा सकता। तो हम इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि बाहरी अंग से जुड़े हुए हैं ना, तो ये छह विकार को प्रकट करने के लिए, बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए इनको क्या चीज की जरूरत है? इंद्रियों की जरूरत है, बाहरी इंद्र। तो इसका ही मतलब थोड़ी है कि आंखें जो देखती हैं वो उससे हम सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे, सिर्फ मनस बिगाड़ने का काम था आंखें देखना। अरे सामने गड्ढा है, पहाड़ का खाई शुरू हो रही है, आप चलते जा रहे हो, तो आंख का काम वो था, मन में छह विकार बनाना और ये कह ये सोचना कि ये पेड़ तो अच्छा है, ये पेड़ अच्छा नहीं है, अरे पेड़ सारे अच्छे, हर चीज अपने आप में सुंदर है, सत्य सुंदर है, उस बात को उतना ही देखना और समझना चाहिए था, लेकिन बुद्धि तक जाते तो होता है ना। तो ये सब प्रत्याहार का मतलब होता है, इन छह विकारों को ना बनने देना अपने अंदर, घर नहीं करने देना। और ये छह विकार में से कोई भी अगर जागे तो अपने मन पे इतना कंट्रोल रखना कि ये छह जागने ना पाए, उसको इंद्रिय जय कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, उदाहरण देती हूं कि इंद्रिय जय संसार में ही बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर ना हो तो क्या होगा, जिससे कि यह बात आपके दिमाग में और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, सारे साइंटिस्ट जितने भी होते हैं वो सब इंद्रिय जय होते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता अगर वो इंद्रिय जय नहीं है, है ना। क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है वो अपना सालों तक एक ही चीज की रिसर्च करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते रहते हैं, उसमें लगन से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो उन्हें क्या छोड़ना पड़ता है? लोभ छोड़ना पड़ता है, उनको लोभ आ सकता है ना कि बताओ मेरे घर के लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के, और ये दुनिया में बहुत सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। और या फिर उसको ऐसा भी लालच छोड़ना पड़ सकता है कि भाई मैं जाके सो जाता हूं, चार दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं, चार रातें होंगी मैं सोया नहीं हूं, मैं सो जाता हूं जाके। हर चीज का लोभ, हर तरह का इंद्रिय सुख एक साइंटिस्ट को छोड़ना पड़ता है, अगर तो वो साइंटिस्ट है, तो है ना, अच्छा साइंटिस्ट है तो छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा और उसके मन में ऐसी कोई कामना जागेगी नहीं जो इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई हो सकता है उसका वो जो लैब है काम करने की, वो कोई बहुत सुंदर जगह नहीं होती है, लैब मशीन ही मशीन, इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर, तो वो ऐसी कोई बहुत खूबसूरत सी देखने की जगह नहीं है। हो सकता है आपको फिजिकल तकलीफ भी हो रही हो कि गर्मी ही गर्मी हुई चली जा रही है लेकिन पंखा नहीं चला सकते, क्यों कि हमारा ये सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन सूख जाएगा, तो फैन नहीं हो सकता यहां पर, और बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रख सकते, एसी नहीं चला सकते, इतने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किए जाते हैं, तो क्या साइंटिस्ट उस लैब पे घुसता नहीं है? घुसता रहता है। तो बेचारे की ऐसा नहीं कि उसे इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, उल्टा हो रहा है, उसकी इंद्रियां उत्पीड़न में है, फिर भी उसके अंदर कंट्रोल है, जा नहीं रहा वो वहां से। उसे घर में कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई चीजें हो सकती है, लेकिन उसका उसका एक्सपेरिमेंट उसके लिए ज्यादा महत्व रखता है, तो उसमें लगा हुआ है। तो इंद्रिय जय है वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उसकी कामनाएं इंद्रिय सुख से और उसका जीवन इंद्रिय सुख से जीता नहीं है वो, है ना, और कोई उसकी कामना इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई भी नहीं है। साइंटिस्ट हो गए, ऐसे और भी लोग होते हैं आपको समाज में देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी मिलिट्री के लोग हैं। अब हम ये नहीं कह सकते यहां पर सारे ही साइंटिस्ट इंद्रिय जय है ना, नहीं होते। सारे ही आर्मी, मिलिट्री, नेवी में काम करने वाले 100% लोग ऐसे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि एक बहुत ज्यादा बड़े प्रतिशत में वो ऐसे हैं, इसीलिए हम उनका एग्जाम्पल उठा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। हम एक और किसी व्यक्ति का क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत कम है वहां पर लोगों का, परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग इंद्रिय जय वो बहुत कम है उस जगह पे, तो हम उसका उसका उदाहरण नहीं उठा रहे हैं, तो हम इसका उदाहरण उठा रहे हैं। तो अब दूसरे लेवल पे और मिलिट्री वाले सारे लोग हो गए, अरे कोई इंद्रिय को सुख मिल रहा है क्या वहां बर्फ में खड़े होने में और बॉर्डर की रक्षा करने में? नहीं, रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने में राजस्थान के अंदर कोई बहुत इंद्रिय सुख है क्या? नहीं है, इंद्रियां उत्पीड़न में है, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके, इतनी इतनी हार्श उनकी ट्रेनिंग होती है, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है, सो कर करके अपने आप को इंद्रिय जय बना रखा है। ये कहीं पे अगर किसी आतंकवादी से लड़ने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, आवाज नहीं करनी है ना, तो फिर चाहे गोली भी लग गई है ना, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। साधारण आदमी कैसा होता है, चीखता ही रहेगा वो, तो गोली लगना तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा हाथ कट जाए किसी का तो ये लोग कितना चीखते चिल्लाते हैं कि जिनमें हाथ कट जाता है या कुछ हो जाता है, चीख चिल्ला के अल्लाह मचा के इतना अल्लाह मचा देते हैं, तो कितनी छोटे सी चीज से उन्हें कितना आसारा दुख हो जाता है, कितना आंच, क्योंकि इंद्रिय सुख से जी रहे हैं ना, प्रत्याहार नहीं है। तो प्रत्याहारी होना और इंद्रिय जय होना साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग में भी इंक्लूडेड होता है, वो सिर्फ योगियों तपस्वियों की जैसी चीज नहीं है, उनके लेवल पे तो होता ही होता है योगियों तपस्वियों के लेवल पे, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि संसार में भी देखने को मिलता है प्रत्याहार और इंद्रिय जय, ठीक है, कि बुद्धि काम करती है, इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के सुख के लिए नहीं जिया जाता, बुद्धि के लिए जिया जाता है, बुद्धि से जिया जाता है, चेतना बुद्धि में केंद्रित रखी जाती है, इंद्रियों में नहीं, है ना। तो ऐसे ही अब साइंटिस्ट हो गए, मिलिट्री वाले लोग हो गए, डॉक्टर देखो, है ना, डॉक्टर को भी कितने सारे पोस्टमार्टम करते हैं, कितने सारे मरीजों का इलाज करते हैं और कितना थक चुके होते हैं। अरे कोविड में पूछो, कोविड जब हुआ 2 साल के अंदर अंदर हर तरह के हर तरफ के डॉक्टरों की काम कर करके क्या हालत हुई। और भारत में तो चलो मैं मानू, कहते हैं कि भारत की पर कैपिटा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फिर भी डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बाहर के देशों की बात से को तो डॉक्टर है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर कि है ही नहीं डॉक्टर, बहुत ही कम डॉक्टर है, एक तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन उसके हिसाब से भी डॉक्टर जितने होने चाहिए उस बहुत ही कम स्पेशलिस्ट यहां पर होते हैं। इंडिया में, पूरे भारत में ढूंढने निकलोगे तो आपको हजारों की संख्या में एक स्पेशल का, ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट आप ढूंढ रहे हो कैंसर के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो भारत में तो आपको फिर भी हजारों की संख्या में ऑन्कोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं। यहां पर आप ढूंढने जाओगे तो 10 नहीं मिलेंगे, 10 पूरे ऑस्ट्रेलिया में, सोचो, तो इतनी कमी है। तो लेकिन मैं क्या समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर डॉक्टर की, नर्सिंग स्टाफ की, नर्स की, सबकी हालत बहुत बुरी थी कोविड के टाइम पे, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में डॉक्टरों की हालत वैसे ही इन जनरल बुरी रहती है, क्योंकि डॉक्टर है नहीं और तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि यहाँ पे सरकार खर्चा उठाती है ना, मेडिकेयर का खर्चा, मेडिकल, आपकी मेडिकल सर्विसेज सरकार ने आपको दी हुई है, जैसे कि भारत में भी है, सरकारी सिस्टम भी है और प्राइवेट भी है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, तो यहां पर भी सरकारी सिस्टम भी है, तो हम सरकारी सिस्टम की बात करें, चाहे वो भारत का हो चाहे वो यहां का हो, एक एक डॉक्टर को इतने ज्यादा पेशेंट देखने पड़ते हैं कि कोविड हो चाहे ना हो उनकी हालत हमेशा बहुत बुरी रहती है। तो फिर क्या इंद्रिय जय नहीं होंगे अगर प्रत्याहार नहीं रखेंगे, तो यही सोच लेंगे चलो अब मैं सो जाता हूं, चलो अब मैंने खाना खा लिया, कौन करेगा ये ऑपरेशन, या वो सोच ले अरे आज तो मेरे शाम को दोस्त लोग आ रहे हैं, मुझे पार्टी करनी है उनके साथ, चलो ये ऑपरेशन ही कैंसिल कर दो, ये सर्जरी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मेरे को तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। करता कोई डॉक्टर ऐसे? कितना ही थका होता है रात को, आधी रात को नींद से उठ के डॉक्टर आ जाता है ना? उसके पेशेंट को, उसके किए हुए सर्जरी के पेशेंट को कुछ भी हो जाए, 2 मिनट के अंदर उसको अगर कॉल गई है कि अरे आपका पेशेंट जो है उसका यह बीपी गिर रहा है, सांस गिर रही है, उसकी पल्स गिर रही है, उसका कुछ हो रहा है, फटाफट से आधी रात को नींद में उठ के पजामे में इंसान डॉक्टर बेचारा वहां चल देता है हॉस्पिटल के अंदर। ये नहीं सोचता कि बेचारा ठीक से कपड़े भी नहीं पहने, उसे पूरे कपड़े भी नहीं पहने, पजामे में, टी शर्ट में, पजामे में, शर्ट में उठ के चल देता है, जल्दी से नाइट गाउन में पहुंच जाता है डॉक्टर। प्रत्याहार है ना? नहीं तो इंद्रिय सुख के बारे में सोचता, अभी तो मैं पूरा डॉक्टर बन के तैयार होऊंगा अच्छे से, है ना, फिर जाऊंगा। या तो देखो कि प्रत्याहारी होना, प्रत्याहार किस लेवल पे काम कर रहा है ना? अगर मान लीजिए अब इन्हीं चीजों में से हम बात करते हैं कि अब हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठा लोगे, और जरूरी नहीं है कि वो यही 3-4 फील्ड के लोग हों, और शिक्षक में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ शिक्षक बहुत ही प्रत्याहारी होते हैं, कई बार भूखे होते हैं, कई बार खाना नहीं ठीक से खाया होता है, नाश्ता नहीं करा होता है, क्लास लेनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, या कोई भी चीज करनी होती है तो करते ही हैं बेचारे, ठीक है। तो जैसे हर क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको प्रत्याहारी किस्म के लोग, है ना? अब लेकिन कितने तरह का, कितना अच्छा प्रत्याहार है वो डिपेंड करता है ना, आदमी से दूसरे, हर व्यक्ति व्यक्ति पे, अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग तरह का लेवल का प्रत्याहार हो सकता है। अब हम उल्टी बात करते हैं कि प्रत्याहार नहीं है तो ये 6 चीजें क्या करेंगी। प्रत्याहार नहीं है तो कामना में तो आपको समझ में सीधा सीधा आ गया कि उनकी सारे, ऐसे लोगों की सारी कामनाएं इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई होगी। तो ये जो आप कंज्यूमरिज्म इतना देख रहे हो ना कि हर वक्त ये नए कपड़े, ये नए जूते, ये नई चीजें, ये सब कुछ, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म जो फैल रखा है, का जो ये सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, सब कुछ आता रहता है, सब इंद्रिय सुख के लिए। बहुत कम कोई ऐसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आता है जो एक्चुअली आपकी सेहत के लिए ठीक है, या आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, या आपके जीवन के लिए सच में जरूरी होता है। ज्यादातर ऐसी चीजों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं इनके इंद्रिय, जिनका कि रियल में शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं हो रहा होता, और जीवन भी उससे कोई सुधारा नहीं जा रहा होता, ऐसी चीजों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और उससे कंज्यूमरिज्म फैलाया जाता है। तो इंद्रिय जय नहीं है लोग, इसीलिए तो कंज्यूमरिज्म फैल रखा है ना, नहीं तो फैलता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके अंदर ये कामना पैदा करना कि अरे ये वाला मेकअप कर लोगे, बालों को ऐसा करा लोगे, ब्यूटी की ये क्रीम लगा लोगे, तो तुम उसके बाद क्या हो जाओगे, सुंदर, और फिर तुम्हारी ज्यादा वैल्यू होगी। देखो तो आपका मान जोड़ जोड़ दिया, और इंद्रियों से, रूप से मान जोड़ दिया आपका, तो आपके अंदर कामना जाग गई, हाँ ये क्रीम तो मैं लाऊंगी ही लाऊंगी, उससे मेरी झुर्रियां चली जाएंगी और मैं एकदम अच्छी दिखूंगी, फिर मुझे अच्छा अच्छा पति मिलेगा, अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा। अभी कामनाएं कैसी हो गई? आपका मान जोड़ दिया। तो आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है, आपको मूर्ख बनाना कितना आसान है, अगर आपके मन में ये 6 विकार हैं और आप इंद्रिय जय नहीं हो तो। लोभ, कोई भी आपका लोभवश फायदा उठा सकता है। कौन से वो लोग होते हैं ना जो करप्शन फैला के रखे थे, इतना भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर जो इतना फैला हुआ है, वो क्या है? लोभ ही तो है। अरे जितना मिल रहा था उतना खुद कुछ नहीं रह पा रहे थे, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, वो वाली बात से समझ के खुश संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, लोभ आया मन में, लालच आया मन में। तो लालच आया तो गलत तरीके से, सही तरीके से, हर तरह से काम कर रहे हैं। सोचो किसी साइंटिस्ट के अंदर लोभ पैदा हो जाए तो क्या करेगा? उसको कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयां बनाने वाली कंपनी कोई उसको बोलेगी कि तुम ऐसी दवाई बना दो जिससे कि सर दर्द तो ठीक होता हो लेकिन लिवर फेल हो जाता हो, तो फिर उसके बाद हम लिवर फेल की दवाई बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर लिवर फेल से किडनी फेल होगी उसको बेचेंगे, तो ऐसे ऐसे करके सब चीजें बिगड़ती जाएंगे। तो तुम ये रिसर्च करके, और ऐसी दर, वो साइंटिस्ट भी कह रहा है हाँ इससे तो तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम तो एक सिर्फ सर दर्द की दवाई नहीं, तुम तो बीमारी भी बेच रहे हो साथ में, तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत पैसे आएंगे उससे, तो बहुत पैसे आएंगे तो चलो फिर हम सब मिलकर बांट लेंगे वो पैसे। तो देखो लोभ आ गया तो क्या क्या कर सकता है इंसान, है ना? लोभ से एक शिक्षक क्या कर सकता है कि मैं क्लास में पढ़ाऊ ही क्यों, इतनी मेहनत से अच्छे से क्यों पढ़ाऊ, किसी को पढ़ना है तो मेरे पास ट्यूशन पे आए तब पढ़ाऊंगा मैं उसे, ये सब चीजें जो नॉर्मल सिलेबस, जो नॉर्मल कोर्स है वो मैं क्यों पढ़ाऊ, वो भी मैं तब पढ़ाऊंगा जब कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो ये लोभ आ गया मन में। डॉक्टर के मन में भी आ सकता है तो वो इतनी सी बात का या तो इलाज ही नहीं करेगा बस आपको जीवन भर, या फिर करेगा भी तो इस तरह से कि एक चीज बिगाड़ता है दूसरी चला देता है, एक चीज चलती है आपके शरीर में दूसरी चलनी बंद हो जाती है। ये लोभ के मन के विकार में से लोभ का विकार है। कोई भी आपको जरा से पैसे का लालच देकर या जरा से सुख का लालच देकर आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। देख रहे हो, तो लालच काम करता है आपके ऊपर, लोभ काम करता है, लोभ से आपको गुलाम बनाया जा सकता है ना। ऐसे ही मद है, मैं, ये मेरा देश है, ये मेरी भाषा है, ये मेरा है, ये सब जो आपका है उसकी सुरक्षा करना है ना, उसका पालन करना, उसको सस्टेन करना लाइफ के अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन मद में आ जाना एक बिल्कुल अलग बात है ना। मेरी पोजीशन कैसे ले ली, किस कोई मेरी पोजीशन पे कैसे रह सकता है, और मैं, मेरे लिए ये नहीं हुआ तो फिर क्या किया तुम लोगों ने सारे दिन ऐसे। तो मद में जो आपके अहंकार को पूरा, तो आप देखते हो ना बहुत सारी जगहों पे चाटुकारिता चलती है, जैसे हम चाटुकारिता कहते हैं ना, किसी के तलवे चाटना, चाटुकारिता करना है ना ऐसे। तो उस चीज को हम, वो उस चीज का एक्चुअल में मतलब क्या है कि कोई आपके अहंकार को, अहम को, अहंकार को क्या कर रहा है, बल दे रहा है। तो वो आपके हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, सत्य बोलेगा नहीं, और आपने कहा हाँ पूरा पश्चिम से, सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता है तो चलो ठीक है पश्चिम से निकलता है, और कुछ भी बात पे हाँ मिलाया जा रहा है। तो आपके आसपास के सारे लोग, अगर आपके अंदर बहुत ही गहरा मद है, अहंकार है बहुत गहरा, तो क्या होगा, आपके आसपास सारे सिर्फ चाटुकारिता वाले टाइप के तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कभी कोई सच बोलने वाला इंसान आपके साथ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्यों? आपके सच को तोड़ेगा, आप भाग जाओगे, आपके अहंकार को तोड़ेगा और आप भाग जाओगे वहां से, आप उस इंसान को जीवन में से निकाल दोगे, अपने घर से निकाल दोगे, सब जगह से निकाल दोगे, क्योंकि वह आपके अहंकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके अहंकार को बल नहीं दे रहा। कितने सारे खाने के और कितनी सारी चीजों के एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं जहां पे वो आपको दिखाते हैं, ओ दिस इज माय वर्ल्ड, अरे ये मेरा साम्राज्य है और मैं यहाँ का राजा। आपको राजा बनने की फीलिंग, आपको रानी बनने की फीलिंग, वो आपके मद को सपोर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं है ना, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन भी होते हैं कि उनके अहंकार की पूर्ति, उनके अहंकार को सपोर्ट करते रहना, बस झूठे अहंकार को है ना, अहंकार वैसे भी झूठी चीज ही है, उसको सपोर्ट करते रहना। तो हर लेवल पे आप संसार में देखोगे कि कितना खराब इस चीज का वो हो जाता है, कितने खराब इस चीज के परिणाम है इस तरह का मद रखने के। सेम चीज हर्ष में है, फालतू का हर्षित उल्लास से तोते हुए घूमते रहो तो भड़क जल्दी जाओगे। भड़क इन द सेंस, किसी ने आपको कहा चल चलो वहां चल रहे हैं, यहां वहां पर ये हो रहा है वहां पर, अरे आपको जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी, चले गए वहां पर हर बात में, क्योंकि हर्षित उल्लासित रहते हैं तो कोई कुछ भी कह रहा है तो जल्दी से मान ले रहे हैं, बुद्धि तक जा ही नहीं रहा है। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, हर बात पे प्रतिक्रिया, पूरी तरह से सोचने समझने की शक्ति का नाश। ये कौन से लोग होते हैं जिनको भड़काकर मॉब बनाया जाता है। मॉब हम किसे कहते हैं कि झुंड बना देना लोगों का, और वो झुंड मिलके कोई एक साथ कोई क्राइम कर दे, मार दिया लोगों को, तो उस झुंड में क्रो, वो सारे जो है अति एक्साइटेड लोग हैं जिनके अंदर क्रोध को जगा दिया गया, और क्रोध भी है उनके अंदर, चलो इन्होंने हमारा ये तोड़ा था, घर तोड़ा था, अभी हम इनका घर तोड़ देंगे जाके, और 10-20 लोग गए बदला लेने के लिए। ये सब कुछ कैसे हो पाता है? क्योंकि मन में ये छह विकार है। समाज में ये विकृतियां आती कैसे हैं? क्योंकि मन में ये छह विकार है, मन अस्थिर है ना। ऐसे ही मान मान सम्मान, अरे अपने देश में मान सम्मान के भूखे थे, साइंटिस्ट थे जहां काम कर रहे थे, और किसी ने कोई मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, दूसरे के देश में चले गए, वहां पे जाके बड़े खुश हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक डेस्क दे दी, एक कमरा दे दिया बैठने के लिए, और एक अच्छे से पैसे दे दिए, और ऊपर से चार शब्द भी बोल दिए, अरे आपसे बड़ा सम्मानी आदमी कौन होगा, और आप तो महामना है, और आप सोच रहे हो अच्छा मुझे अपने घर में तो कोई इज्जत नहीं मिलती, बाहर के लोग इतनी इज्जत देते हैं, तो ऐसे चले गए उस काम को करने के लिए बाहर, ऐसे नहीं। अब मान के भूखे एक और तरह के, मान जब इतना बिगड़ जाता है तो देखो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है ना, कि ये मान की भूख आपसे क्या करवा सकती है, देखो बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल आप देखो तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपने आज वो यहां गए है ना, आज उन्होंने जीवन में ये किया, चाहे भले ही उनकी जिंदगी में कितने दुख और परेशानी हो, लेकिन उनका बाहर जो जीवन चल रहा है वो दिखा कुछ और जीवन, अरे हम तो बड़े सुखी हैं, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, अरे हम तो यहां घूमते हैं वहां घूमते हैं, चाहे भले मन से बिल्कुल अति के दुखी हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं, क्योंकि मान चाहिए, झूठा मान चाहिए। दुनिया भर का वो इंस्टाग्राम पे जो चलता है, कुछ लोग तो कपड़े ही इंस्टाग्राम खरीदते सिर्फ इसलिए हैं कि इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दो चार फोटो डाल दें फिर जाके कपड़े वापस कराते हैं, ऐसे लोग देखे मैंने। क्या चाहिए इन सबको, मान, कोई हमें देखे, मान चाहिए। सब कुछ जीवन सोशल मीडिया के लिए जिया जा रहा है, मान के इसको भी कहते हैं, फेमस होने को भी कहते हैं, विख्यात, ख्याति होना, उसको भी, वो भी मान का वो है। तो पागल हुए जा रहे हैं फेम के लिए, नेम के लिए, और उनके नेम और फेम में कोई खराबी नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए नेम और फेम के अंदर, चाहे भले ही स्वास्थ्य खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, और बुद्धि तो खराब है ही ऐसे लोगों की, तो और क्या बोले लेकिन उस झूठे मान सम्मान के पीछे, उस झूठे सब चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो ये जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, जो हर वक्त सोशल मीडिया में रहते हैं, उनका एक ही काम है, मान के पीछे भागना। सम्मान मिलेगा उन्हें इस बात से कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, रूप का सम्मान, रूप से होने वाला सम्मान, नहीं तो कहीं पहाड़ चढ़ रहे हैं आप, चाहे भले ही कुछ कर रहे हैं, अरे आप पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उस चीज का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, किस लिए कि मान सम्मान मिल जाए। मान सम्मान तब मांगना की कामना रखना, मान सम्मान की, सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे अंदर अपने अंदर स्वाभिमान है, हम खुद का एक आत्मा होने के नाते सम्मान करते हैं, तो बाहर किसी से सम्मान सम्मान की इच्छा होती ही नहीं। जो आदमी आत्मा होने के बाद भी, जो मनुष्य आत्मा होने के बाद भी अपने आप को अंदर से मान सम्मान नहीं दे पाता है, वो बाहर से मांगता है। अंदर अगर हीन भावना से ग्रस्त है किसी भी वजह से, कि मेरे पास कम बुद्धि है, कि कम पैसा है, कि कम ये है, कि कम वो है, किसी भी बात से हीन भावना से अगर अंदर से ग्रस्त है, तो बाहर से मान प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको मान बाहर से मिले हुए मान सम्मान से भरने की कोशिश करता है। जबकि जो ऋषि होते थे, अरे इतने 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 योग दर्शन के, सांख्य दर्शन के सबको लिखने वाले जो इतने सारे हमारे ऋषि थे, आयुर्वेद लिखने वाले सारे, कौन सा मान सम्मान के लिए कर रहे थे ये सब कुछ? तो संसार में धर्म का पालन, कर्म का पालन, अपने अपने दायित्व का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि मान सम्मान चाहिए, इसलिए किया जाता कि वो करना जरूरी है, बुद्धि से चलते हैं। तो प्रत्याहार वो है जो इन छह चीजों में उलझा हुआ नहीं है। इंद्रिय जय वो है जिसके मन में, मनस में ये छह विकार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ये छह विकार उसके अस्तित्व में, वो इंसान इंद्रिय जय है। उस इंसान को एक इंद्रिय भी कह देते हैं, क्यों? कि अब वो पांच इंद्रियां और छठी इंद्रिय उसका मन छह की तरह से काम, छह इकाई, छह यूनिट के जैसे अलग अलग काम नहीं करते, वो छह के छह एक हो चुके हैं, तो इंसान एक इंद्रिय कहलाता है, क्योंकि उसका अपने मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, वो प्रत्याहारी है, वो इंद्रिय जय है। बहुत बड़ी बात लगती है सोचने से कि हनुमान जी इंद्रिय जय थे, या कोई भी योग समाधि तपस्वी की तरफ आगे जाते हैं वो इंद्रिय जय होते हैं। अरे साइंटिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सब थोड़े थोड़े लिमिट में अपने, और इनमें से जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे भले परोपकारी अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं, वो जब इंद्रिय जय बनते हैं तो बहुत अच्छी अपनी ही फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं, इस संसार का, इस मानवता का बहुत सारा भला कर जाते हैं, एक शिक्षक होकर भी, एक व्यापारी होकर भी, एक मिलिट्री में आर्मी सर्विस में भी होकर भी, एक साइंटिस्ट होकर भी, और कुछ भी होकर बहुत भला और बहुत मानवता का भला कर जाते हैं, धर्म की स्थापना कर जाते हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, उन सबको हम इंद्रिय जय कहते हैं। तो प्रत्याहार क्या है, ये छह विकार मन में उत्पन्न ना होने देना, वो प्रत्याहार। ठीक है, तो समझिए इन सब बातों को, देखिए और प्रत्याहार से प्रैक्टिस करिए, इंद्रिय जय बनिए। नमस्ते, जय शिवाय।